एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपकी पहली मेजबान।
और मैं हूं आपका दूसरा मेजबान। ज्ञान गोष्ठी के इस नए अंक में सबका स्वागत है।
आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जो बहुत दिलचस्प है और शायद थोड़ी सी सोचने पे मजबूर करने वाली भी।
हाँ बिल्कुल।
किताब का नाम है इस्लामिक हिस्ट्री, अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन, और लेखक हैं एडम सिल्वरस्टीन।
और ये किताब आज जरूरी क्यों है? देखिए, इस्लामी इतिहास एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हम सबने थोड़ा बहुत सुना होता है ना।
हाँ बिल्कुल, स्कूल में या कहानियों में।
हाँ, पर अक्सर हमारी समझ या तो बहुत सिंपल होती है, जैसे कुछ लड़ाइयाँ, कुछ बादशाह बस, या फिर वो पहले से बनी बनाई धारणाओं पर टिकी होती है।
सही कहा। और सिल्वरस्टीन इसी चीज को चैलेंज करते हैं। वो दिखाते हैं कि ये विषय कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, कितना मल्टीलेयर्ड है, और कितनी बार इसे गलत समझा गया है।
और ये सिर्फ पास्ट की बात नहीं है, ये समझने की चाबी है कि हमारी आज की दुनिया, खासकर मिडल ईस्ट, साउथ एशिया और यहां तक कि यूरोप के कई हिस्से, वो वैसे क्यों हैं जैसे वो हैं।
बिल्कुल। और किताब एक बहुत ही बेसिक लेकिन गहरा सवाल पूछती है
कि भाई ये इस्लामिक इतिहास आखिर है क्या चीज। सुनने में तो बहुत सीधा लगता है पर
जवाब उतना सीधा है नहीं। अच्छा, पहले लेखक के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, एडम सिल्वरस्टीन।
हाँ, ये कोई टिपिकल हिस्टोरियन नहीं है। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और अब्राहमिक धर्मों के एक्सपर्ट हैं, यहूदी, ईसाई और इस्लाम।
और इनकी खास दिलचस्पी इस्लाम के शुरुआती दौर में है।
हाँ, और उसके आसपास की जो सिविलाइजेशंस थीं उनमें। लेकिन इनकी सबसे खास बात जो इस किताब को भी अलग बनाती है वो ये है कि ये सिर्फ अरबी या फारसी के इस्लामी स्रोतों पर ही निर्भर नहीं रहते।
अच्छा, तो फिर
ये उस दौर की दूसरी जबानों जैसे सीरियाई, हिब्रू, ग्रीक, अर्मेनियाई में लिखे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी भी गहराई से स्टडी करते हैं।
ओह, तो इसका ये हुआ कि इन्हें शुरुआती इस्लामी इतिहास को सिर्फ बाद वाले मुस्लिम नजरिए से नहीं बल्कि
बल्कि उन लोगों के नजरिए से भी देखने का मौका मिलता है जो उस वक्त शायद मुस्लिम नहीं थे या जो घटनाओं को बाहर से देख रहे थे। एक बाहरी पर्सपेक्टिव मिलता है।
ये तो बहुत अहम है।
हाँ, और यही चीज इनके काम को अलग बनाती है। ये सिर्फ जो बनी बनाई कहानियां हैं उन्हें दोहराते नहीं बल्कि उन पर सवाल उठाते हैं। वो हमें सिखाते हैं कि इतिहास सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या हुआ बल्कि ये समझना है कि इतिहास लिखा कैसे जाता है, उसे समझा कैसे जाता है, कौन सी आवाजें उसमें शामिल हैं, कौन सी छूट गईं। इतिहास को एक क्रिटिकल नजर से देखना सिखाते हैं।
तो ये किताब ए वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन, ये सिर्फ घटनाओं की एक लिस्ट नहीं है फिर?
नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे आप एक तरह का वैचारिक नक्शा समझ सकती हैं। सिल्वरस्टीन का मकसद सिर्फ ये बताना नहीं कि क्या हुआ बल्कि ये समझाना है कि हम इस्लामी इतिहास के बारे में जो जानते हैं वो कैसे जानते हैं।
हमारे पास जानकारी आई कहाँ से, स्रोत क्या हैं?
हाँ, और उन स्रोतों की अपनी लिमिटेशंस क्या हैं, उनकी सीमाएं क्या हैं।
अच्छा, तो ये किताब इतिहास के साथ साथ इतिहास लेखन यानी हिस्टोरियोग्राफी पर भी बात करती है।
हाँ, वही तो इसका सेंट्रल पॉइंट है। और इसी से जुड़ा वो बड़ा सवाल कि इस्लामी इतिहास का क्या है? क्या ये सिर्फ इस्लाम धर्म का इतिहास है
या उन साम्राज्यों और समाजों का इतिहास जहाँ मुसलमान शासक थे?
हाँ, जहाँ मुसलमान शासक थे लेकिन जहाँ बड़ी संख्या में ईसाई, यहूदी, पारसी और दूसरे धर्मों के लोग भी रहते थे।
और वो भी तो सभ्यता का हिस्सा थे ना?
ये बहुत जरूरी सवाल है। और फिर ये सवाल कि ये इतिहास शुरू कब होता है? क्या 7वीं सदी में पैगंबर मोहम्मद के साथ,
या जैसा कुरान में जिक्र है इब्राहिम या आदम जैसे पहले के पैगंबरों से?
और खत्म कब होता है? क्या 1258 में जब मंगोलों ने बगदाद तबाह किया,
या 1924 में जब ऑटोमन खिलाफत खत्म हुई, या ये अभी भी चल रहा है?
ये सारे सवाल दिखाते हैं कि इस्लामिक इतिहास कोई एक मोनोलिथिक चीज नहीं है। ये सीधी सादी कहानी नहीं है। सिल्वरस्टीन हमें कुरान, हदीस
यानी पैगंबर के कथन,
हाँ, और सीरा यानी पैगंबर की जीवनी, और फिर बाद के मुस्लिम इतिहासकारों जैसे अल तबरी के लिखे इतिहास, इन जैसे स्रोतों की ताकत और कमजोरियों के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं।
और साथ ही वो गैर मुस्लिम स्रोतों पर भी जोर देते हैं जैसे ग्रीक, सीरियाई।
बिल्कुल, क्योंकि वो अक्सर एक अलग, एक बाहरी नजरिया पेश करते हैं। तो कुल मिलाकर ये किताब हमें इतिहास को सिर्फ रटना नहीं बल्कि उस पर सवाल उठाना और उसे क्रिटिकली देखना सिखाती है।
चलिए अब किताब के अंदर थोड़ा और चलते हैं। पहला बड़ा सवाल जिससे किताब शुरू होती है वो यही है, इस्लामिक इतिहास आखिर है क्या?
हाँ, ये इस्लामिक शब्द ही अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। क्या ये ज्योग्राफी के आधार पर है, मतलब वो इलाके जहाँ मुसलमान ज्यादा हैं, या मुस्लिम शासन रहा,
या ये धर्म के आधार पर है यानी सिर्फ मुसलमानों का इतिहास?
और अगर ये मुस्लिम शासन वाले इलाकों का इतिहास है तो इसमें उन करोड़ों गैर मुसलमानों का क्या रोल है जो सदियों तक इन साम्राज्यों में रहे, जैसे ईसाई, यहूदी, पारसी, हिंदू, बौद्ध, क्या वो इस कहानी का हिस्सा हैं?
सिल्वरस्टीन क्या कहते हैं इस बारे में?
वो कहते हैं कि उन्हें शामिल किए बिना ये कहानी अधूरी है, वो भी इसका हिस्सा थे।
फिर वो टाइमलाइन वाली बात, कहाँ से शुरू करें कहाँ खत्म करें?
माँ, अगर पैगंबर मोहम्मद से शुरू करते हैं तो क्या हम इस्लाम की उन जड़ों को नजरअंदाज कर रहे हैं जो कुरान के मुताबिक इब्राहिम तक जाती हैं?
और अंत, क्या 1258 में बगदाद का पतन एक एंड पॉइंट था, या 1924 में खिलाफत का खत्म होना, या आज भी ये इतिहास बन रहा है?
ये सवाल ही दिखाते हैं कि इतिहास कोई फिक्स चीज नहीं है, ये इंटरप्रिटेशन का मामला है, व्याख्या का खेल है।
बिल्कुल।
अब दूसरा अहम मुद्दा आता है, हम जो कुछ भी जानते हैं वो जानते कैसे हैं, यानी हमारे स्रोत क्या हैं? ये तो जासूसी जैसा काम लगता है।
भी थोड़ा वैसा ही, सबसे पहले तो कुरान है, इस्लाम का सबसे पवित्र ग्रंथ, लेकिन ये एक इतिहास की किताब नहीं है।
सही कहा, ये एक धार्मिक, नैतिक और कानूनी टेक्स्ट है। हाँ, इसमें कुछ ऐतिहासिक घटनाओं के रेफरेंसेस हैं, पर उन्हें सीधे सीधे हिस्ट्री मान लेना वो ठीक नहीं होगा।
फिर आती हैं हदीस और सिरा।
हाँ, हदीस यानी पैगंबर मोहम्मद के कहे या किए गए कामों का ब्यौरा, और सिरा यानी उनकी जीवनी। ये बहुत जरूरी स्रोत हैं, खासकर अर्ली इस्लाम को समझने के लिए। लेकिन यहाँ एक मतलब पेच है।
क्या?
ये चीजें पैगंबर के गुजर जाने के लगभग 150 से 250 साल बाद लिखी गई।
150 से 250 साल, ये तो बहुत लंबा अरसा है। तो इसका मतलब क्या हुआ?
इसका मतलब ये हुआ कि ये बातें पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब ओरली चली आ रही थी, और जब इन्हें लिखा गया तब तक लिखने वालों के अपने समय की जो बहसें थीं, धार्मिक, राजनीतिक, उनके अपने विचार, शायद अनजाने में ही सही, इनमें शामिल हो गए हों।
अच्छा, तो ये डायरेक्ट आई विटनेस अकाउंट नहीं है?
नहीं, ये बाद की पीढ़ियों द्वारा सहेजी गई यादें हैं, इसलिए इन्हें इस्तेमाल करते हुए बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। थोड़ा डिटेक्टिव वर्क करना पड़ता है, हर गवाह की बात को तोलना पड़ता है, समझना पड़ता है कि वो क्यों बोल रहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है।
और फिर बाद के इतिहासकारों के लिखे ग्रंथ हैं, जैसे अल तबरी का इतिहास।
हाँ, 9वीं-10वीं सदी में लिखे गए ये ग्रंथ बाद में इस्लामी इतिहास की मतलब स्टैंडर्ड कहानी बन गए। लेकिन यहाँ भी एक बात ध्यान रखनी होती है
कि वो शायद किसी शासक के दरबार में लिखे गए।
बिल्कुल, अक्सर किसी बादशाह या अमीर के संरक्षण में लिखते थे, तो हो सकता है कि उनके लेखन में अपने पेटर्न को खुश करने या उनकी सत्ता को सही ठहराने की कोशिश झलकती हो, यानी बायस की संभावना रहती है।
तो फिर भरोसेमंद क्या है, किस पर यकीन करें?
यही पर सिल्वरस्टीन गैर मुस्लिम स्रोतों के महत्व पर जोर देते हैं। उस जमाने के ईसाई, यहूदी या पारसी लेखकों ने अपनी जबानों ग्रीक, सीरियाई, हिब्रू, पहलवी में जो कुछ लिखा वो हमें एक बाहरी नजरिया देता है।
वो शायद चीजों को अलग तरह से देख रहे होंगे।
हाँ, वो शायद मुस्लिम विजयों को या नए मुस्लिम समाज को एक अलग रोशनी में देखते हों। इन सभी स्रोतों को मिलाकर ही एक ज्यादा बैलेंस्ड तस्वीर उभर सकती है। यह हमें सिखाता है कि किसी भी बड़ी घटना को समझने के लिए कई अलग अलग आवाजें सुनना जरूरी है।
ठीक है, तो स्रोतों की इस पहेली को समझने के बाद किताब हमें इतिहास के सफर पर ले चलती है। शुरुआत होती है पैगंबर मोहम्मद, पहले खलीफाओं और शुरुआती विस्तार से।
हाँ, किताब पैगंबर मोहम्मद के जीवन का एक संक्षिप्त परिचय देती है, मक्का में उनका संदेश, फिर मदीना हिजरत और वहां पहले मुस्लिम समुदाय और एक तरह के राज्य की स्थापना। ये इस्लाम की नींव का दौर था।
इसके बाद आता है पहले चार खलीफाओं का दौर, जिन्हें सुन्नी इस्लाम में राशिदुन कहते हैं, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। इसे अक्सर एक स्वर्ण युग की तरह देखा जाता है ना?
हाँ, पवित्र नेतृत्व का आदर्श माना जाता है। लेकिन सिल्वरस्टीन हमें याद दिलाते हैं कि ये तस्वीर भी पूरी तरह मतलब गोल्डन नहीं थी। इसी दौर में गंभीर राजनीतिक संकट भी पैदा हुए,
खासकर तीसरे खलीफा उस्मान की हत्या।
हाँ, और उसके बाद चौथे खलीफा अली और सीरिया के गवर्नर मुआविया के बीच हुआ गृह युद्ध, जिसे पहला फितना कहते हैं, पहला बड़ा संकट।
और इसी फितने ने इस्लाम के अंदर सबसे बड़े विभाजन, सुन्नी और शिया की नींव डाली।
बिल्कुल, जो आज तक कायम है इस गृह युद्ध के बाद मुआविया ने उमैयद वंश की स्थापना की। अब खिलाफत वंशानुगत हो गई, हेरिडिटरी, और राजधानी मदीना से दमिश्क चली गई।
उमैयदों के दौर में साम्राज्य बहुत फैला है ना, स्पेन से लेके सिंध तक।
हाँ, जबरदस्त विस्तार हुआ। लेकिन उमैयदों पर यह आरोप भी लगा कि वो अरबों को ज्यादा महत्व देते हैं, और जो गैर अरब मुसलमान थे जैसे ईरानी, बर्बर, वो थोड़ा सेकंड क्लास सिटीजन जैसा महसूस करते थे।
और इसी असंतोष ने अब्बासी क्रांति को जन्म दिया।
हाँ, खासकर पूर्वी प्रांतों में जो असंतोष था। अब्बासियों ने, जो पैगंबर के चाचा अब्बास के वंशज होने का दावा करते थे, 750 ईस्वी में उमैयदों को हटा दिया।
और यहीं से शुरू होता है वो दौर जिसे अक्सर इस्लाम का स्वर्ण युग कहा जाता है, अब्बासी खिलाफत का दौर।
अब्बासियों ने अपनी राजधानी बगदाद बनाई, एक नया शानदार शहर। उनके दौर में ईरानी संस्कृति और एडमिनिस्ट्रेशन का असर बढ़ा और समाज ज्यादा मल्टीकल्चरल हुआ। गैर अरब मुसलमानों को ज्यादा महत्व मिला।
ये दौर अपनी इंटेलेक्चुअल और कल्चरल अचीवमेंट्स के लिए मशहूर है, खासकर वो ट्रांसलेशन मूवमेंट।
हाँ, बगदाद में ग्रीक, फारसी, यहाँ तक के संस्कृत टेक्स्ट्स का भी बड़े पैमाने पर अरबी में अनुवाद हुआ। साइंस, मेडिसिन, मैथ, फिलोसफी,
गणित में अल खवारिज्मी, चिकित्सा में इब्न सीना,
बिल्कुल अलकिंदी, अल फराबी, फिलोसफी में, ये सब इसी दौर की देन है। बगदाद दुनिया के सबसे बड़े इंटेलेक्चुअल सेंटर्स में से एक बन गया था।
लेकिन सिल्वेस्टीन यहाँ भी थोड़ा सावधान रहने को कहते हैं, इस स्वर्ण युग की तस्वीर को भी थोड़ा बारीकी से देखने की जरूरत है।
हाँ, वो बताते हैं कि जहाँ एक तरफ बगदाद में ये सब चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ अब्बासी खलीफा की जो पॉलिटिकल पकड़ थी वो धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी।
मतलब साम्राज्य इतना बड़ा था कि उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो गया।
हाँ, दूर के प्रांतों में लोकल गवर्नर या अमीर लगभग आजाद हो गए थे। जैसे स्पेन में उमैयद वंश का शासन जारी रहा, नॉर्थ अफ्रीका और मिस्र में अलग डायनेस्टीज आ गईं जैसे फातिमिद।
तो मतलब 9वीं-10वीं सदी आते आते बगदाद का खलीफा ज्यादातर एक सिम्बॉलिक फिगर रह गया था। असली पावर उसके हाथ से निकल गई थी।
बिल्कुल, और यहीं से शुरू होता है जिसे सिल्वरस्टीन मध्यकाल कहते हैं, लगभग 10वीं से 15वीं सदी। और वो इस आम धारणा को चैलेंज करते हैं कि अब्बासी ताकत के कमजोर होने के बाद इस्लामी दुनिया में सिर्फ पतन ही हुआ।
अच्छा,
तो पतन नहीं हुआ तो क्या हुआ? ये दिलचस्प है।
सिल्वरस्टीन कहते हैं कि पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन का मतलब सिविलाइजेशन का एंड नहीं था। हाँ, एक सेंट्रल पावर नहीं रही, सत्ता डिसेंट्रलाइज हो गई, लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि बगदाद के अलावा कई नए और शानदार कल्चरल और पॉलिटिकल सेंटर्स उभर आए।
जैसे
मिस्र में काहिरा, फातिमिदों और बाद में मामलुकों के तहत, स्पेन में कॉर्डोबा उमैयदों के तहत, ईरान में इस्फहान। मतलब एक स्वर्ण युग के बजाय कई छोटे छोटे स्वर्ण युग अलग अलग जगहों पर चल रहे थे।
ये तो बिल्कुल अलग नजरिया है। और इस दौर के कुछ और खास बातें, क्रूसेड्स। हाँ, यूरोप से आए धर्म योद्धाओं के साथ संघर्ष, जिन्हें क्रूसेड्स कहते हैं। इस्लामी नजरिए से देखें तो ये ज्यादातर साम्राज्य के किनारों पर सीरिया, फिलिस्तीन के कोस्टल इलाकों में होने वाले हमले थे। हाँ, जरूसलम का छिन जाना एक बड़ा झटका था, लेकिन सलाद्दीन जैसे नेताओं ने बाद में उसे वापस जीता।
और तुर्कों का आना भी इसी दौर में हुआ था ना?
हाँ, सेंट्रल एशिया से तुर्क कबीले बड़ी संख्या में आए। शुरू में वो अक्सर गुलाम सैनिक, मामलूक के तौर पर भर्ती हुए, लेकिन धीरे धीरे अपनी मिलिट्री पावर के दम पर उन्होंने सत्ता हासिल कर ली। जैसे सेल्जुक तुर्कों ने 11वीं सदी में बगदाद पर कंट्रोल कर लिया, बाद में मिस्र में मामलुक सुल्तानों ने एक शक्तिशाली राज्य बनाया।
और फिर आए मंगोल 13वीं सदी में। 1258 में बगदाद की तबाही, वो तो बहुत भयानक मानी जाती है।
हाँ, बगदाद का पतन और अब्बासी खलीफा की हत्या एक बहुत बड़ी घटना थी जिसने इस्लामी दुनिया को हिला दिया। लेकिन सिल्वरस्टीन फिर से जोर देते हैं कि ये भी इस्लामी सभ्यता का अंत नहीं था।
अच्छा, कैसे?
मुगलों ने ईरान और सेंट्रल एशिया में अपने राज्य बनाए, जैसे इल्हानी साम्राज्य, और कुछ ही पीढ़ियों में उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और इस्लामी संस्कृति को मतलब आगे बढ़ाया। ये दौर असल में इस्लामी दुनिया की जबरदस्त रेजिलियंस यानी लचीलेपन को दिखाता है। बाहरी हमलों और अंदरूनी बिखराव के बावजूद सभ्यता टिकी रही और नए रूप लेती रही।
इसके बाद हम आते हैं लगभग 1500 ईस्वी के बाद के दौर में, जिसे गन पाउडर साम्राज्य और आधुनिक युग कहा जाता है।
गन पाउडर साम्राज्य इसलिए क्योंकि इन्होंने तोपों और बंदूकों जैसी नई मिलिट्री टेक्नोलॉजी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। इस दौर में इस्लामी दुनिया में तीन बड़े और शक्तिशाली साम्राज्य उभरे।
पहला तो ऑटोमन साम्राज्य था, उस्मानी सल्तनत।
बिल्कुल, सुन्नी तुर्क साम्राज्य। 1453 में कुस्तुनतुनिया जीता, उसे इस्तांबुल बनाया। इनका शासन ईस्टर्न यूरोप, मिडल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका तक फैला था। उस समय दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्यों में से एक थे।
दूसरा, ईरान का सफविद साम्राज्य।
हाँ, सफविद शिया थे। उन्होंने ईरान में एक मजबूत फारसी साम्राज्य बनाया और शिया इस्लाम को राजधर्म मनाया। ऑटोमन सुन्नी और सफविद शिया के बीच अक्सर लड़ाई और यू नो राइवलरी चलती रहती थी,
जिसका असर आज भी दिखता है उस रीजन में।
बिल्कुल। और तीसरा बड़ा साम्राज्य तो हमारे अपने हिंदुस्तान में था, मुगल साम्राज्य।
जी हाँ, बाबर ने स्थापित किया।
हाँ, जड़े सेंट्रल एशिया के तुर्क मंगोलों में थी। ये भी सुन्नी थे, लेकिन उन्होंने भारत में फारसी, इस्लामी और स्थानीय भारतीय संस्कृतियों का एक अनोखा संगम बनाया। आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर में उनका योगदान जबरदस्त है।
तो ये तीनों साम्राज्य, ऑटोमन, सफवीद, मुगल, दिखाते हैं कि बगदाद के स्वर्ण युग के कई सदियों बाद भी इस्लामी दुनिया में पॉलिटिकल पावर, कल्चरल रिचनेस और मिलिट्री स्ट्रेंथ जारी थी। ये पतन वाली कहानी को पूरी तरह खारिज करते हैं।
बिल्कुल। लेकिन फिर आता है मॉडर्न पीरियड, यानी लगभग 18वीं-19वीं सदी के बाद का समय। ये यूरोप के साथ टकराव और फिर कॉलोनियलिज्म का दौर था।
यूरोपीय देशों की बढ़ती हुई ताकत मुस्लिम साम्राज्यों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई।
हाँ, उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी मिलिट्री पावर। धीरे धीरे ज्यादातर मुस्लिम इलाके या तो सीधे यूरोपियन कब्जे में आ गए या उनके असर में।
और इस चुनौती का सामना करने के लिए मुस्लिम समाजों ने अलग अलग रास्ते अपनाए।
हाँ, कुछ ने इस्लाम में सुधार या रिवाइवल की बात की, जैसे अरब में वहाबी आंदोलन या मिस्र और भारत में मॉडर्निस्ट आंदोलन। कुछ ने वेस्टर्न स्टाइल नेशनलिज्म का रास्ता अपनाया, जैसे तुर्की में कमाल अतातुर्क।
और 20वीं सदी में डीकॉलोनाइजेशन के बाद,
उसके बाद भी कई चुनौतियां बनी रहीं। नए देशों की सीमाएं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इसराइल फिलिस्तीन का मुद्दा, तेल की राजनीति और पॉलिटिकल इस्लाम के अलग अलग रूपों का उदय, वेस्ट के साथ रिश्ते भी कॉम्प्लेक्स बने रहे। ये सब उसी लंबे इतिहास का हिस्सा हैं।
वाह, ये तो सच में एक बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स कैनवस है। तो इस पूरी चर्चा से, इस किताब से कुछ मुख्य विषय या संदेश क्या निकलते हैं, अगर हमें कुछ बातें याद रखनी हो तो?
मेरे ख्याल से सबसे पहली बात तो यही है कि इस्लामी इतिहास की डेफिनेशन ही एक पहेली है। ये सिर्फ धर्म का इतिहास नहीं है, ये समाजों, राज्यों, संस्कृतियों का मिला जुला इतिहास है। और इसे समझने के लिए हमें हमेशा अपने स्रोतों पर सवाल उठाने की जरूरत है। ये कहानी कौन कह रहा है, क्यों कह रहा है, किसके नजरिए से?
हाँ, ये बात तो आज के दौर में भी बहुत रेलेवेंट है। हर कहानी के कई पहलू होते हैं।
बिल्कुल। दूसरी बात है एकता का आदर्श और बिखराव की हकीकत। इस्लाम में हमेशा एक उम्मा, ग्लोबल मुस्लिम कम्युनिटी और एक खलीफा का आइडियल रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत ज्यादातर पॉलिटिकल डिविजन, सिविल वॉर और अलग अलग सल्तनतों की रही है।
पर दिलचस्प ये है कि इसी बिखराव से कई कल्चरल सेंटर्स पनपे।
हाँ, बगदाद, कॉर्डोबा, कायरो, इस्फहान, इसी पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन ने उन्हें फलने फूलने का मौका दिया।
तीसरा
और शायद सबसे जरूरी, उत्थान स्वर्ण युग पतन की सीधी साधी कहानी का खंडन। ये सोचना कि एक गोल्डन एज था और उसके बाद सब ढलान पर आ गया, ये इतिहास को बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई करना है। सिल्वरस्टीन दिखाते हैं कि अब्बासियों के बाद भी मिस्र में, स्पेन में, ईरान में, भारत में, तुर्की में इस्लामी सभ्यता ने अलग अलग रूपों में महान ऊंचाइयां हासिल की।
तो पतन के बजाय शायद बदलाव या ट्रांसफॉर्मेशन ज्यादा सही शब्द है।
बिल्कुल। हमें अपने या दूसरों के इतिहास को ऐसे आसान खांचों में नहीं बांटना चाहिए।
और चौथी बात जो मुझे बहुत अहम लगी, वो है मेयर मुसलमानों की भूमिका। जिसे हम इस्लामी सभ्यता कहते हैं, वो सिर्फ मुसलमानों ने नहीं बनाई।
हाँ, ईसाई, यहूदी, पारसी और बाद में हिंदू और बौद्ध भी। ये लोग सिर्फ शासित प्रजा नहीं थे, वो साइंटिस्ट, डॉक्टर, फिलोसोफर, ट्रांसलेटर, ट्रेडर, एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर इस सभ्यता के निर्माण में एक्टिव पार्टनर थे।
ये बहुलवाद का एक जरूरी सबक है।
बिल्कुल। और पांचवी बात, ग्लोबल कनेक्शन और सिंथेसिस की क्षमता। इस्लामी सभ्यता कभी आइसोलेशन में नहीं रही। इसने अपने से पहले की ग्रीक, ईरानी, सीरियाई परंपराओं को अपनाया, ट्रांसलेट किया, उनसे सीखा। फिर इसने सेंट्रल एशियन, इंडियन और बाद में यूरोपियन कल्चर्स के साथ भी लेन देन किया। यह हमेशा से एक ग्लोबल और अडैप्टिव सभ्यता रही है।
इस किताब में यकीनन कई ऐसे विचार हैं जो सोचने पर मजबूर करते हैं। कुछ और खास या यादगार विचार जो श्रोताओं के साथ साझा करना चाहें? कोई ऐसी बात जो आपको पढ़ते हुए लगी कि अरे वाह?
एक विचार जो मुझे बहुत स्ट्राइकिंग लगा वो ये है कि असल सवाल ये नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये है कि हम इस्लामी इतिहास से मतलब क्या समझते हैं, यानी डेफिनेशन और इंटरप्रिटेशन का महत्व। हम इतिहास को कैसे फ्रेम करते हैं, वही उसकी समझ तय करता है।
हाँ, ये बात सही है। दूसरा विचार जो दिमाग में रह जाता है, वो स्रोतों की चुनौती से जुड़ा है। इस्लाम के शुरुआती सदियों का इतिहास ज्यादातर बाद की पीढ़ियों ने लिखा, वो भी ओरल ट्रेडिशन के आधार पर, घटनाओं के होने और उनके लिखे जाने के बीच का ये लंबा फासला।
हाँ, कभी कभी सदियों का। ये इतिहासकारों के लिए एक बड़ी पहेली है। ये हमें सिखाता है कि अतीत के बारे में हमारा ज्ञान कभी भी, मतलब 100% सर्टन नहीं हो सकता, उसमें हमेशा व्याख्या की गुंजाइश रहती है।
तीसरा विचार जो पतन वाली धारणा को तोड़ता है वो ये कि बगदाद की सेंट्रल पावर के कमजोर होने के बाद पॉलिटिकल बिखराव का मतलब कल्चरल डार्कनेस नहीं था।
बिल्कुल नहीं, बल्कि इससे काहिरा, कॉर्डोबा, इस्फहान जैसे कई नए कंपीटिंग सेंटर्स का उदय हुआ, जहां अलग अलग तरह के स्वर्ण युग पनपे।
चौथा, जिसे हमने पहले भी छुआ, कि इस्लामी सभ्यता कभी केवल मुसलमानों तक सीमित नहीं रही। ग्रीक फिलॉसफी का अनुवाद करने वाले ईसाई विद्वानों से लेकर यहूदी डॉक्टरों और दरबारियों तक गैर मुसलमान सिर्फ माइनॉरिटी सब्जेक्ट्स नहीं थे, बल्कि इस सभ्यता के को क्रिएटर्स थे।
ये आज के मल्टीकल्चरल समाज के लिए बहुत जरूरी पर्सपेक्टिव है। और पांचवां, शरिया यानी इस्लामी कानून के बारे में। सिल्वरस्टीन तर्क देते हैं कि शरिया को अक्सर एक कठोर और न बदलने वाली संहिता के रूप में देखा जाता है, लेकिन इसे मूल रूप से एक लचीले फ्रेमवर्क के रूप में डिजाइन किया गया था।
अच्छा,
लचीला कैसे?
कि वो न्याय और सामाजिक कल्याण के बेसिक प्रिंसिपल्स को बनाए रखते हुए नई सिचुएशंस और चैलेंजेस का समाधान कर सके। ये शरिया के बारे में फैली कई मॉडर्न मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करने में मदद करता है।
ये सब बातें सुनने में बहुत ज्ञानवर्धक हैं, लेकिन सवाल उठता है कि इन सबका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या लेना देना है? हम आज इनसे क्या सीख सकते हैं? मुझे लगता है सबसे बड़ी सीख क्रिटिकल थिंकिंग की है। ये किताब हमें सिखाती है कि किसी भी कहानी पर, खासकर उन बड़ी, सरल और इमोशनली अपीलिंग कहानियों पर, आंख बंद करके यकीन न करें जो हमें इतिहास, पॉलिटिक्स या समाज के बारे में बताई जाती हैं।
हमें हमेशा पूछना चाहिए, ये बात कौन कह रहा है, क्यों कह रहा है, इसका सबूत क्या है, क्या कोई दूसरा नजरिया भी है?
बिल्कुल, ये आदत आज की फेक न्यूज और प्रोपोगंडा भरी दुनिया में तो बहुत ही जरूरी है। चाहे हम न्यूज पढ़ रहे हों, सोशल मीडिया देख रहे हों या नेताओं के भाषण सुन रहे हों।
सही कहा। और दूसरी बात, ये किताब हमें दुनिया को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है। आज हम मिडिल ईस्ट में जो टेंशन देखते हैं, जैसे सऊदी अरब ईरान राइवलरी,
जिसकी जड़ें सुन्नी शिया विभाजन में भी हैं,
हाँ, या इसराइल फिलिस्तीन का मुद्दा, या कॉलोनियलिज्म की लेगेसी, इन सबको समझने के लिए ये हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी है। ये हमें बताता है कि आज की समस्याएं अचानक पैदा नहीं हुई, उनकी गहरी ऐतिहासिक जड़ें हैं।
ये तीसरा फायदा डायलॉग और टॉलरेंस को बढ़ावा देने में है। ये किताब क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस जैसी खतरनाक धारणाओं को चैलेंज करती है। ये दिखाती है कि इस्लाम और वेस्ट या भारत या चीन के बीच हमेशा सिर्फ लड़ाई ही नहीं हुई, बल्कि ज्ञान, विज्ञान, कला, व्यापार का गहरा लेनदेन भी हुआ है।
ये जानना कि इस्लामी सभ्यता में यहूदियों और ईसाइयों की कितनी अहम भूमिका थी, हमें आज के जमाने में इंटर रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने में मदद करता है।
हाँ, और ये इस्लाम और मुसलमानों के बारे में बनी बनाई रूढ़ियों, स्टीरियोटाइप्स को तोड़ने का काम भी करती है।
और शायद ये किताब मुस्लिम समुदायों के भीतर भी एक हेल्दी डायलॉग को बढ़ावा दे सकती है, अपनी विरासत को सिर्फ ग्लोरीफाई करने या सिर्फ पतन की कहानी के तौर पर देखने के बजाय।
उससे उसकी पूरी कॉम्प्लेक्सिटी में एक क्रिटिकल नजरिए से देखना, ये एक ज्यादा मैच्योर तरीका है। ये धर्म, राज्य और मॉडर्निटी के रिश्तों पर मीनिंगफुल बहस की गुंजाइश पैदा करता है।
तो कुल मिलाकर इस किताब से आपका अंतिम निष्कर्ष क्या है, सबसे बड़ी टेकअवे?
मेरा टेकअवे ये है कि इतिहास सिर्फ बीती हुई घटनाओं का कलेक्शन नहीं है, बल्कि ये इंटरप्रिटेशन की एक एक्टिव और लगातार चलने वाली प्रोसेस है। इसे पढ़ने के बाद हमें इस्लामी सभ्यता की जबरदस्त कॉम्प्लेक्सिटी, उसकी इंटरनल डाइवर्सिटी और उसकी लगातार बदलते रहने की क्षमता का एहसास होना चाहिए। और शायद सबसे महत्वपूर्ण सबक यह है कि सही सवाल पूछना, स्रोतों के बारे में, डेफिनेशंस के बारे में, जो कहानियां हमें बताई जाती हैं उनके बारे में, सारे जवाब जान लेने से ज्यादा जरूरी है।
हाँ, और मेरे लिए एक स्थायी अंतर्दृष्टि ये रही कि हमें दुनिया को आसान बाइनरीज में देखने की आदत छोड़नी होगी, जैसे इस्लाम बनाम वेस्ट, धर्म बनाम विज्ञान, परंपरा बनाम आधुनिकता। सिल्वरस्टीन की किताब दिखाती है कि हकीकत हमेशा ज्यादा मिलीजुली, ज्यादा जटिल होती है। इसमें लगातार सिंथेसिस होता है, टेंशन होता है, अडेप्टेशन होता है और रेजिलियंस होती है। ये किताब हमें किसी भी विषय पर, चाहे वो इतिहास हो या आज का समाज, ज्यादा गहराई, ज्यादा सहानुभूति और ज्यादा बौद्धिक ईमानदारी के साथ सोचने और बात करने के लिए तैयार करती है। ये असल में हमें सिखाती है कि इस विशाल और प्रभावशाली इतिहास के बारे में सोचा कैसे जाए।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।